संतप्त मानस शांत हम स्थूल रूप से भेद विज्ञान की बात करते हैं तो जो निश्चय व्यवहार नए हैं उन नयों के आधार पर चार प्रकार के व्यवहार का निषेध करके निश्चय पर जाते हैं। और उसमें फिर सब पहला ग्रुप है स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव, जिसे हम उपचरित असदभूत व्यवहार नय का विषय कहते हैं। तो इनसे भगवान आत्मा भिन्न है, इनमें ही हम अपना भगवान आत्मा को मान लेते हैं। ये अज्ञान है और इसे भिन्न जानकर उस आत्मा में अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है, ये सम्यक ज्ञान है। फिर दूसरे ग्रुप में शरीर को लेते हैं और फिर तीसरे ग्रुप में राग को लेते हैं, फिर चौथे ग्रुप में भेद को लेते हैं। इस तरह ये चार चीजों में अपनापन करने वाले, इनका कर्ता भोक्ता मानने वालों का निषेध करके और अपने में जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है अपना कर्म करने वाले और उसमें ही कर्तृत्व भोक्तृत्व करके उसको सम्यक दृष्टि ज्ञाति धर्मात्मा मानते हैं। इस वजह से उन सबसे पृथक करने के लिए ये बार बार ज्ञान मात्र कहते थे। और ज्ञान मात्र कहने में स्त्री पुत्र आदि छूटते थे, वैसे देह छूटती थी, राग छूटता था और फिर गुण भेद भी छूटता था। तो गुण भेद छूटता था तो और कहते थे ज्ञान मात्र। तो वहां से आचार्य देव को ये शंका हुई कि ये शिष्यों की समझ में ऐसा भ्रम पैदा हो सकता है कि बस मैं तो ज्ञान मात्र हूं और उस ज्ञान मात्र में भी अनंत गुणों को भी शामिल ना करें और अपनी जो निर्मल पर जो भी पर्याय हैं उनको भी पर में खता कर खता ही था तो पर ना मान लें। तो उन्हें साइडवाद की स्थापना, ज्ञान मात्र में साइडवाद की स्थापना करने के लिए ये परिशिष्ट लिखे। तो ये 14 जो बोल हैं, पहला बोल था तत्त का, दूसरा बोल था एक अनेक का और फिर आठ मैंने चार ग्रुप थे द्रव्य क्षेत्र काल और भाव संबंधी और फिर उसके बाद में एक नित्य नित्य का। तो ऐसे 14 एकांत 14 अनेकांतों को एकांत का निषेध करके अनेकांत की स्थापना की। लेकिन 14 के 14 में इस बात की विशेषता है कि वो ज्ञान मात्र शब्द से शुरू की थी ना बात, तो वह ज्ञान और ज्ञेय संबंधी भूल ही है। पर एक भूल है कि ज्ञान और ज्ञेय और इनके बीच में जो विभाजन रेखा होना चाहिए भिन्नता की, और ज्ञान स्वभाव में अपनापन होना चाहिए और ज्ञेय स्वभाव में अपनापन नहीं होना चाहिए, वो उन्होंने यहां पर सिद्ध किया। और एक किस तरह ज्ञान वाला ज्ञेयों को अपना मान लेता है, पांडे राजमल जी ने इसमें ये किया कि ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव की जगह द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव ले लिया। माने वहां पर स्व और पर का भेद किया था ना, और इन्होंने ज्ञान और ज्ञेय किया तो ये कहते हैं ये वो पर्याय स्वभाव है और ये द्रव्य स्वभाव है। तो कहते हैं द्रव्य पर्याय में ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ता है ना, तो पर्याय को ज्ञेयों की जगह पर्याय रख दिया उनने। और वो उन्होंने ये कल्पना की भेद माने पर्याय, पर्याय माने भेद, बस भेद की मुख्यता ली। तो चाहे वो द्रव्यगत भेद हो, चाहे वो क्षेत्रगत भेद हो, चाहे वो कालगत भेद हो और चाहे भावगत भेद हो और चाहे नित्यानित्य संबंधी भेद हो, किसी भी भेद को निषेध करके और उन्होंने अभेद द्रव्य की स्थापना की। इसलिए फंडामेंटल अंतर इतना है और इसी के आधार पर जो भूगोलों में अंतर पड़ता है दोनों के प्रतिपादन में, वो इस बात का अंतर पड़ता है। अब अपनी बात मूल चल रही है कि वो क्षेत्र की दृष्टि से, ये क्षेत्र वाला बोर्ड है ना, ये जो पेज नंबर 250 पे नीचे की दो पंक्तियां यहां अपन ने पढ़ी थी, मुझे मालूम है, और शायद फिर कहीं ऐसा याद है कि छंद पे ही रुके थे। एक जो छंद है जो 53 पे, तकरीबन हाँ तो इनकी चर्चा अपन ने कल शुरू की थी। तो अब थोड़ा बहुत भ्रम है, मैं तो ये सारा जो प्रकरण है ये पूरा पढ़ने के लिए छोड़ दिया था और कहा था अपन अगले से पे जाएंगे, इस पे पेज नंबर 263 पे पढ़ाएंगे, ऐसा बोला था मैंने। है यार कोई बात नहीं है, अपन वहां से फिर चलते हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। आप जो घर पे पढ़े तो वो ख्याल में बात आ सकती है, इसलिए मैं बाद में रोजाना बताता हूँ। अब यदि यही पढ़ना है तो ये पढ़ो फिर 254-55, हाँ हिंदी के ही पढ़ लो।
पर क्षेत्र व्यापी ज्ञेय ज्ञायक आत्मा, पर क्षेत्र में यह मान कर निज क्षेत्र का अपलाप करते अज्ञजन, जो जान कर पर क्षेत्र को पर क्षेत्र में होते नहीं, वे ज्ञातवादी निज रसी निज क्षेत्र में जीवित रहे। मैं ही रहूं निज क्षेत्र में इस भाव से पर क्षेत्रगत, जो ज्ञेय उनके साथ ज्ञायक भाव भी परित्याग कर, हो तुच्छता को प्राप्त शठ पर ज्ञानी जन पर क्षेत्रगत, रे छोड़ कर सब ज्ञेय वे निज क्षेत्र को छोड़े नहीं।
बहुत स्पष्ट है पर क्षेत्र व्यापी ज्ञेय ज्ञायक, पर क्षेत्र में रहने वाले जितने भी ज्ञेय हैं उन्हें जानने वाला जो आत्मा है उसका नाम कह दे पर क्षेत्र व्यापी ज्ञेय ज्ञायक। पर क्षेत्रगत गेयों को जानने वाला आत्मा को ही हमने पर क्षेत्रमय मान लिया, कि आत्मा पर क्षेत्रमय, उसने तो उनको सिर्फ जाना था है? और हमने उन्हें उन्मय मान लिया, कि यह मान कर निज क्षेत्र का अपलाप करते अज्ञजन, और उस पर क्षेत्र में इतना वो मशगूल हो गया लीन हो गया कि वो स्वक्षेत्र को भूल गया। अब वो पर क्षेत्र में अपनापन स्थापित करना वो स्वक्षेत्र को भूलना ये एकांत है, ये एकांत है। और इस एकांत को छोड़कर कि पर जो जान कर पर क्षेत्र को, पर क्षेत्र को जानना तो छोड़े नहीं और पर क्षेत्रमय होते नहीं, लेकिन पर क्षेत्र में हो मत जाना। जैसा कि वो टोडम जी का एक वाक्य है ना कि वो मिलेच्छों का, मिलेच्छों की भाषा में तो समझा ना, शायद वो आसमी गाथा में समय सार में है, लेकिन मिलेच्छ नहीं हो जाना। आज हमारी समस्या ये हो गई है कि मिलेच्छ भाषा तो आती नहीं किसी को, लेकिन सब मिलेच्छ हो गए, पहनने में, उड़ने में, खाने में, पीने में। मैंने दो बातें हैं ना अलग अलग, वो ये कहते हैं कि भाई हमें आप विश्व से संपर्क रखना है तो हमें विश्व की भाषा जाननी पड़ेगी, और विश्व की भाषा आज अंग्रेजी बन गई है, कैसे बन गई, किसने बना दी, वो बातें जाने दें, अपने इतिहास में ना जाएं, लेकिन उससे विश्व में कहीं भी चले जाते हैं तो वहां अपना काम चल जाता है। और कोई भाषा कितनी भी अधिक, वैसे तो सबसे ज्यादा बोलने वाले हिंदी के हैं, 70 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। इसलिए मैं विद्यार्थियों को कहता हूं कि दूसरी भाषा पर मोहित होते हैं, तो कहता हूं कि यदि तुम्हें जन जन तक पहुंचना है, अधिकतम लोगों तक पहुंचना है, तो ये हिंदी भाषा ही काम आएगी सर। लेकिन वो अब अंग्रेजी भाषा ऐसा क्यों ऐसा है? विश्व में अंग्रेजी बोलने वाले उतने लोग नहीं है जितने हिंदी बोलने वाले हैं। क्यों? यहां से जाएगा तो सबसे पहले वो कहीं साइकिल से तो जाएगा नहीं, स्कूटर से तो जाएगा नहीं, प्लेन से जाएगा। अब वो प्लेन में जितने भी व्यवस्थापक होंगे नीचे से ऊपर तक, वे सब अंग्रेजी जानने वाले होंगे। आप सुनिए ना, तो उसका काम अंग्रेजी के बिना नहीं चलेगा, और अपनी मातृभाषा में प्रिय भाषा में बोले चाहे नहीं बोले। ऐसे ही जब विदेश जाएगा तो बड़े बड़े शहरों में पहुंचेगा, बड़े बड़े व्यापारियों से मिलेगा, तो वहां उस भाषा से उसका काम चलेगा। सर्विस में जाएगा, पढ़ लिख के जाएगा, वहां काम करेगा, तो सारी पढ़ाई उसमें विकसित हुई है, मूल किताबें उसमें मिलती हैं। जैसे भी अपना जैन धर्म की बातें सब संस्कृत में और प्राकृत में मिलती है ना, तो उन्हें पढ़ना जरूरी है। जैसे मूल बातें उस भाषा में मिलती हैं, तो उसमें उन्हें पढ़ना बोलना जरूरी है काम करने के लिए भी। तो वो कम लोगों की भाषा होने पर भी विश्व में किसी भी देश में हम चले जाएं और वहां उसका काम हमारा चल जाता है। और उसमें एक जबरदस्त कारण ये बना कि अंग्रेजों का राज्य सारी दुनिया में फैल गया। जो कहा जाता था ना कि भाई वो उनके राज्य में सूरज नहीं डूबता है, तो यहां सब हिंदुस्तानी लोग ये समझते थे ये तो फ्रेज है, ऐसी कल्पना करते हैं ना। ऐसे अपन कहते हैं कि उनके में वहां तो आसमान टूट गया, कहा तो ऐसा हो गया है ना, ऐसे ये फ्रेज है। लेकिन एक्चुअल स्थिति थी, क्योंकि उधर अमेरिका में भी उनका राज्य था और इधर मैं पश्चिम में और पूरब में भी था, यहां हिन्दुस्तान वगैरह में, तो पूरब से पश्चिम तक ऐसा राउंड करके ऐसा चक्कर है, आधा चक्कर हो गया ना। इंग्लैंड से अमेरिका गए तो आधा ऐसा हो गया, और इंग्लैंड से हिंदुस्तान आए तो आधा ऐसा हो गया, तो दोनों मिलाने कर इतना हो गया। अब लौट के जाओ ऐसे कैसे आ जाओ, और चार फिर नीचे से ऐसे आ जाओ। तो उधर जापान वगैरह थे तो वहां भी निकला था, सिंगापुर जापान, तो वहां भी ये उनका राज्य था, और यहां पूरा यूरोप में था ही। तो इस तरह से जब यहां से जाते हैं अपन अमेरिका तरफ, कहां से लंदन होते हुए पश्चिम की तरफ से जाते हैं, तो समझो सूरज भी पश्चिम की तरफ भागता है और अपन भी पश्चिम की तरफ भागते हैं। तो जब अपन 24 घंटा चल लेते हैं तब वहां 12 घंटे अंतर आता है। माने यहां से अभी अपन चले तो 12 बजे पहुंचना चाहिए रात के, वो दिन के 12 बजे पहुंच जाते हैं वहां। सुबह यहां से 6 बजे चले, तो सुबह 6 बजे चलेंगे तो उसी रफ्तार से वो आगे वो बढ़ता जाता है। तो 24 घंटा चलते ही रहेंगे और वो सूरज दिखता रहेगा आपको। और जब वहां से लौट के आते हैं तो 6-6 घंटे में सूरज डूब जाता है, फिर रात हो जाती है, फिर 6 घंटे में सुबह हो जाता है, फिर 6 घंटे में रात हो जाती है, फिर सुबह हो जाता है। तो वहां चलते हैं, मान लीजिए 10 तारीख को चले तो यहां 12 को पहुंचते हैं, लगा उतना ही घंटा, 20 घंटे करीब। और जब वापस आते हैं तो जिस तारीख में चलते हैं उसी में पहुंच जाते हैं, नहीं जाते हैं तब। जैसे हम यहां से जाएं तो जिस आज सुबह 3 बजे निकले बंबई से बैठे तो बस आके अमेरिका में पहुंच जाते उसी तारीख को। और एक दफे तो हम इधर से गए, पूरब से जापान से इधर से गए थे, तो हम 19 तारीख को चले और 19 घंटे चले और 18 को पहुंच गए। तो बुद्ध से कहते थे लोग में हम उनका राज नहीं डूब, तो जब उनका राज नहीं डूबा तो उनने जिस भाषा में सारे विश्व में एडमिनिस्ट्रेशन किया तो सारे ऑफिसर उसी भाषा के जानने वाले, डॉक्टर उसी के जानने वाले, वकील भी उसी के जानने वाले, जज भी उनकी उसी की भाषा में जानने वाले, तो उन्हें क्लर्क भी उसी भाषा को जानने वाले चाहिए थे। और क्लर्कों को सारी दुनिया में आज भी बाबू कहते हैं ना, तो वो जैसे यहां पर अंग्रेज लोग मुख्य कुर्सियों पर बैठे रहते थे, मजिस्ट्रेट है, जज है तो अंग्रेज लोग ही होते थे, कलेक्टर है तो अंग्रेज ही होता था, और फिर उसके नीचे जितने जितने होते थे तो हिंदुस्तानियों को पढ़ाकर फिर दसवीं क्लास तक मैट्रिक में, और फिर अंग्रेजी में थोड़ा टेंड करके पर इतनी अंग्रेजी कि जिससे भी अपने कैरियर काम निकाल लें उनसे, और उन सब को बाबू बोलते थे। तो एक ग्रुप है हर समाज में, एक ग्रुप बाबुओं का खड़ा हो गया। जब हम लोग तुमसे भी छोटी उम्र में थे तब इस हिंदुस्तान में पंडितों में दो पार्टियां बन गई थी, एक का नाम था बाबू पार्टी और एक का नाम था पंडित पार्टी। इस नाम से ही पार्टियां थी, आप सोच ही नहीं सकती हूं। यानी वो जो बाबू लोग थे जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते थे, जो क्लर्की करते थे और थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलते थे, और धीरे धीरे ये सूट पैंट पहनने लग गए थे, क्योंकि अंग्रेजी लोगों ने अनिवार्य कर दी ड्रेस, और ड्रेस अनिवार्य कर दें तो इस देश में तुम्हें आना पड़ेगा, तो बस वो ड्रेस उनको पहन के जानी पड़ती थी। तो वो एक बाबू लोगों की पार्टी हो गई और एक पंडितों की। पंडित लोग वो थे जो अपने जैन विद्यालय थे उनमें गोपालदास जी बरैया वगैरह ने उन्हें पढ़ा लिखा के तैयार किए थे, जो भारतीय संस्कृति में धोती कुर्ता पहनते थे, टोपी लगाते थे, पहले पगड़ी बांधते थे वे टोपी लगाने लग गए। तो वो बाबू लोग मतलब नया तो नहीं, हमको सब ये करना चाहिए, ये अच्छा है, इससे धर्म का कोई नुकसान नहीं, धर्म फैलेगा दुनिया में। और वो पंडित लोग कहते कि नहीं नहीं ये सब मिलेच्छ भाषा है, ये मिलेच्छ खान पान है, ये ऐसी ड्रेस भी नहीं अपनाना चाहिए, वो सब इस तरह का बहुत चलता था। और जो प्राचीनता से जकड़े रहना चाहते थे वो पंडित पार्टी थी, और जो उसमें बहुत बदलाव चाहते थे वो बाबू पार्टी थी। पंडित पार्टी में हमारे गुरुजी जैसे लोग बहुत थे उस वक्त, मक्खनलाल जी मतलब, वो पार्टी थी। और बाबू पार्टी में जुगल किशोर मुख्तियार मेरी भावना वाले ऐसे लोग थे जो स्वाध्यायी विद्वान बन गए थे, यानी जिन्होंने विधिवत नहीं पढ़ा था विद्वानों से, वो संस्कृत प्राकृत के इतने बड़े विद्वान नहीं थे, लेकिन स्वाध्याय कर करके, और जैसे वैरिस्टर चंपत रहा है तो वो अंग्रेजी के भी अच्छे विद्वान थे, वो वैरिस्टर थे ना, और फिर यहां से जैन धर्म का भी अध्ययन कर लिया था, तो समय सार वगैरह की, प्रवचन सार की इन्होंने अंग्रेजी में उस वक्त टीकाएं लिखी थी। तो ये दो ग्रुप बन गए थे, तो उनकी जो संस्था थी उसका नाम था महासभा पंडितों की, और बाबुओं ने एक नई संस्था नई बनाई थी उसका नाम था दिगंबर जैन परिषद, है ना। तो इस तरह से इस दो ग्रुपों में पूरा विद्वत समाज बता हुआ था, और बहुत वाद विवाद उस वक्त चलते थे इसी तर्क के आधार पर। जैसे प्रसादी उपाय की टीका और ऐसे कई ग्रंथ इन लोगों ने लिखे जो अंग्रेजी ने अनुवाद किए और उस तरह का प्रचार ज्यादा किया। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि बाबू शब्द हालांकि पंडित शब्द से बहुत हल्का था, जैसे आज अपन क्लर्क बोलते हैं ना, अब क्लर्क भी तो अंग्रेजी का ही है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुनीम जी हैं? और मुनीम जी तो मैनेजमेंट के सबसे बड़े जो होते थे ना मैनेजमेंट वाले, उनको बोलते थे, वे तो मालिक जैसे लगते थे सेठ के, और उन मुनीम जी के अंदर में काम करने वाले 100-200 कर्मचारी ऐसे काम करने वाले थे बाबू लोग तो, और ये पंडित लोग पुराना पढ़ करके ऐसे विद्वान लोग थे। तो ये कहते थे हमारे पास आगम का ज्ञान है, हमारे पास संस्कृत प्राकृत का ज्ञान है, उससे हमने ये चीजें सब निकाली हैं। फिर धीरे धीरे एक एक कहते हैं इतना जोर था कि युगल किशोर जी है ना, तो अब ये अपने को बाबू बाबू युगल किशोर जी लिखते थे। इन्हें यदि पंडित कोई कहते रहे आज भी, तो वे 90 वर्ष के हैं लेकिन आग बबूला हो जाएंगे, दो चार तो सुना देंगे आपको, परंतु बस चले तो दो चार चांटे भी मार देंगे। मैंने उनको पंडित शब्द से मैंने इतना वो हो गया था कि ये पुरातन पंथी है ना। और बाबू शब्द हिंदी साहित्य में ऐसे बदले थे, बाबू क्या क्या नाम थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वगैरह थे, उनके बुद्धे गुलाब राय एमए, श्याम बाबू श्याम सुंदर दास जी, मैंने ऐसे विद्वान थे हिंदी के, और ये पुरातन पुरातन वाले विद्वान भी थे, मतलब इस तरह के। और कुछ लोगों को अपने पंडित शब्द से भी बहुत गौरव था। और ये इस नाम से कम 50 वर्ष जैन समाज के इसमें बीते होंगे जो बाबू पार्टी और पंडित पार्टी के झगड़े में पढ़ते रहे। और इस तरह से समाज का जो जैन धर्म का जो वगैरह किस किस परंपरा में वो बड़ी है, बड़ा है जैन दर्शन का सम में। तो देखो समस्या तो सिर्फ इतनी, मैंने तो आपको थोड़ा इतिहास बताया कि मतलब किस लेवल तक किस नामों से पार्टियां बन जाती हैं। और आज से अभी 30-40 वर्ष पहले की देखोगे तो निश्चय और व्यवहार के नाम से पार्टियां बन गई थी, निश्चय पार्टी और व्यवहार पार्टी, पूरे गांव में ऐसे ऐसे पार्टियां बन गई थी, निश्चय पार्टी और व्यवहार पार्टी। मतलब कभी जिस चीज का जोर चलता है तो वो कितना ज्यादा चलता है। निज क्षेत्र का जो जान कर पर क्षेत्र को पर क्षेत्रमय होते नहीं, मतलब पर क्षेत्र को जानना तो छोड़े नहीं और पर क्षेत्र से अपने को भिन्न जाने, वे स्यादवादी निज रसी निज क्षेत्र में जीवित रहें। वे अपने रस वाले हैं, पर के रस वाले नहीं हैं। अब दूसरे मैं ही रहूं निज क्षेत्र में इस भाव से पर क्षेत्रगत, वो इतनी जोर से बढ़ जाती थी बात कि उन्हें डर लगता था कि मैं पर क्षेत्रगत ना हो जाऊं। मैं उदाहरण के तौर पर दिया था ना कि उनको लगता एक दफे कोई पंडित जी कह दे तो उन्हें लगता था कि नहीं नहीं मुझे लोग पंडित पार्टी का ना समझ लें, मुझे बाबू पार्टी का ही समझना चाहिए। क्या एक बात ऐसी भी थी कि पंडित लोग समाज में पढ़कर तैयार होते थे तो उनको कोई गवर्नमेंट की नौकरी तो मिलती नहीं थी, तो वे समाज की ही नौकरी करते थे, तो बहुत कुछ समाज पर ही निर्भर रहते थे। और बाबू लोग सब क्लर्क थे लगभग, कोई छोटे क्लर्क होंगे कोई बड़े क्लर्क होंगे, थोड़े सीनियर होते जाते हैं, जूनियर सीनियर होते जाते हैं ऐसे, तो उनकी आजीविका स्वतंत्र थी और उन्हें कुछ ज्यादा अच्छे पैसा मिल जाते थे। आज भी होता है ना, उन क्लर्कों को अभी बैंक के चपरासियों को भी इतनी तनख्वाह मिल जाती है कि यहां बड़े से बड़े पंडित को नहीं मिलती। ऐसे दिन भी बीच में आए कि वहां पर एक चपरासी की जो तनख्वाह बैंक में थी, ये सब बैठे हैं ना कुर्सियों पर, ये सब ऐसे ही बैंक की सर्विस वाले लोग हैं। उस जमाने में बैंक में जाना, क्योंकि बैंक की सर्विस छोटी से छोटी चपरासी की भी मिलेगी तो अच्छे पैसा मिलेंगे, आप समझिए। तो ऐसी दृष्टि वाले लोग थे, तो वो दोनों के ग्रुप में ऐसा लगता है जैसे कांग्रेसी को लगता है मुझे भारतीय जनता पार्टी वाला ना मान लिया जाए, और जरा सी बात यदि हिंदुत्व की करे तो उसे डर लगता है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का ना मान लिया जाए, और वो दूसरा आदमी उसका जरा भी सांप्रदायिकता का विरोध करे हैं? तो उन्हें ये डर लगता है कि मुझे ऐसा न मान लिया जाएगा मैं कांग्रेसी हूं। और जब जब लोकप्रियता का फर्क पड़ता है ना, जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी जीती तो लोग फिर धीरे धीरे उसमें से कट कट के उधर पाला बदलने लगते हैं, जब वो जीते तो वहां से करकट के इसमें वे पारा बदल बदल के आते हैं। तो ऐसा उस वक्त पंडितों में भी होता था, बाबुओं में भी होता था। बाबू से पंडित बन जाते थे और पंडित से बाबू बन जाते थे। तो और कुछ लोग उसमें इतने कट्टर थे कि निरंतर उन्हें ये भय रहता था कि हम पंडित ना मान लिए जाएं। चल तो ये देखो यहां लिखा क्या ले पढ़ रहा था मैं, जो जान कर पर क्षेत्र को पर क्षेत्रमय होते नहीं, ये तो पढ़ लिया, मैं ही रहूं निज क्षेत्र में इस भाव से पर क्षेत्रगत जो गए उनके साथ ज्ञायक भाव भी परित्याग कर। वो कहते हैं कि निज को पर क्षेत्रगत नहीं मान लिया जाए, मैं स्वक्षेत्र में ही रहूं, तो ये पर को जानना ही नहीं, क्योंकि जानूंगा तो मुझे पर क्षेत्रगत मान लिया जाएगा। उनने तो निषेध ये किया था कि स्वयं को पर क्षेत्रगत नहीं मानना, जानना तो मैं आपको बता रहा था ना कि धीरे धीरे क्या हुआ कि वे बाबू रहे ना, बाबू लोग तो अंग्रेजी तो उनकी कमजोर होती थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भी बहुत कामकाज हिंदी में होने लग गया, सब जगह घरों में वही बोली जाती थी, बाजार में भी बोली जाने लग गई। तो वो अंग्रेजी ज्ञान तो उनका बहुत ही कमजोर हो गया। कैसे कमजोर हो गया, वो सिर्फ अपने काम वाला अंग्रेजी जानते हैं, बैंक वाला बैंक की अंग्रेजी जानता है, डॉक्टर अपनी डॉक्टरी की अंग्रेजी जानता है, वकीलात अपने वकील की अंग्रेजी जानता है, लेकिन और बाकी दूसरे क्षेत्र की अंग्रेजी नहीं जानता। वह जितना उसका काम है ना सुबह से शाम तक, वो अपने काम में हो गया परफेक्ट। अब फिर अंग्रेजी भाषा की विज्ञता तो कम हो गई और ड्रेस आ गई पक्की, अभी ऑफिस की जो ड्रेस थी वो धीरे धीरे करके भी बन गई। पुलिस वाले को ड्यूटी के लिए जो ड्रेस मिलती है वही घर पर भी पहने, क्या फर्क पड़ता है, रोचक रहता है, कोई देखेगा तो अपने सुनेगा और अपने घर का पैसा खर्च नहीं होता, गवर्नमेंट की ड्रेस मिलती है उससे ही अपना काम चलता है। तो धीरे धीरे घर में भी वो उसी ड्रेसों में आ गए जो ऑफिसों में जिनकी ड्रेसें थी, समझ गए ना। तो वे अंग्रेज तो हो गए, फिर वे चम्मचों से खाने लग गए, घरों में डाइनिंग टेबल आ गई, मतलब धीरे धीरे वो आचरण से तो वे सब अंग्रेज हो गए और भाषा से अंग्रेज नहीं रह पाए। भाषा से होना था मानी मिलेच्छ भाषा में समझना समझाना था और मिलेच्छ नहीं होना था जाना था, अंतर समझ आ गया ना वो, कि मिलेच्छ मत हो जाना, मिलेच्छ भाषा की विशेषज्ञता प्राप्त करना, नहीं मिलेच्छ नहीं हो जाना। लेकिन मिलेच्छ तो हो गए, आचरण तो सब मिलेच्छों जैसा हो गया और भाषा चली गई। फिर ऐसे मान लो पंडितों का जोर चला तो देश तो अप टू डेट टोपियां आ गई, एकदम नौकदार बढ़िया कुर्ता आ गया, जी आ गया, पजामा आ गया, पहन करके एकदम अप टू डेट हो गई देश तो। और पांडित तो संस्कृत प्राकृत भाषा और वो जो उसका गहरा ज्ञान था वो सब चला गया। तो धीरे धीरे वो पंडित और शेष दोनों एक से ही हो गए। वो सूट पैंट वाला ही पंडित भी हो गया और वो भी सूट पैंट वाला तो हो गया और पंडित तो नाम रखा ही रहा, लेकिन पंडिता ही गायब हो गई। ये बात मैं आपको समझा रहा था। तो उनको बहुत वो सीमा रेखा बनाए रहने के लिए ये बहुत सावधान रहना पड़ता है। कभी कभी वो सावधानी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि अपर पक्ष का मिथ्यात्व हो जाता है, अपर पक्ष का एकांत हो जाता है। तो देखो ये है वो कौन सा, मैं ही रहूं निज क्षेत्र में इस भाव से पर क्षेत्र गत जो गे उनके साथ व्यायक भाव भी पत्याग कर, कि जिसने उनको जाना वो भी उन गे में डालोगे झगड़ा खत्म, वो भी मैं नहीं। तो ये उधर का एकांत हो गया ना, पहले तो गेयों को अपने में मान लिया था तो पर की नास्ती का अभाव हो गया था, और अब अपने आत्मा को भी गेहों में डाल दिया, ज्ञान को भी, ज्ञान उस पर्याय को, तो ये नास्ति का अहंकार हो गया। परद्रव्य से नास्ति है और स्वद्रव्य से अस्थि है, ऐसे पर क्षेत्र से नास्ति है और स्वक्षेत्र से अस्थि है। तो ये सारे बोल अस्थि नास्ति पे ही घटित हो रहे हैं। जैसे अपन कहते हैं ना, एक नित्या आत्मा नित्य है, अनित्य है, नित्यानित्य है, अवक्तव्य है, कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है, कथनचित नित्यानित्य है, ऐसे ये बोल है ना, तो ऐसे एकानेक पे भी घटाते हैं। लेकिन वो कहते हैं असली बोल सब ये अस्थि के हैं, है लग रहा है ना। जैसे पर क्षेत्र में गते गेयों को जाना, तो पर क्षेत्र गते गेयों को जानने से एक गलती क्षेत्रगत गलती हुई, पर कालगत गेयों को जाना तो वो कालगत वाली गलती हुई। लेकिन वो उस किया दोनों ने क्या कि ऐसा जानकर अपने अस्तित्व का निषेध किया और अपने नास्तित्व का निषेध किया। निषेध तो हर जगह अस्थि नास्ति का ही हो रहा है। तो गुरुदेव के प्रवचन में आपने सुना होगा शांति जी कई जगह कि वो ये कहते हैं कि ये तो कहते हैं कि नहीं, ये भी सच्चा और वो भी सच्चा, ऐसा अनेकांत नहीं है, ये सच्चा है और वो सच्चा नहीं है, ऐसा अनेकांत है। ऐसे गुरुदेव के प्रवचनों में कई दफे आता था। हमको भी लगता था जब हम कोई पुराने पंडित थे ना, तो हमको भी ऐसा लगता था कि ये कैसे पूछ रहे हैं, ये कह दीजिए है ही नहीं, अपने आप प्रमाण सप्तभंगी है ना, ऐसा भी है और ऐसा भी है, और ये कहते नहीं ऐसा है और ऐसा नहीं है, ऐसा अनेकांत लगाओ। अब देखो ये इनने ये पढ़ा था ना कि हर जगह कोई अस्थि नास्ति लगा रहा एक तरीके से है ना। मैं हुई रहूं निज क्षेत्र में इस भाव से पर क्षेत्र गत जो गेय उनके साथ ज्ञायक भाव भी परित्याग कर हो तुच्छता को प्राप्त। जब ज्ञायक भाव भी छोड़ दिया तब तुच्छ रह गए, पर हो तुच्छता को प्राप्त कौन सच है, पर ज्ञानी जन पर क्षेत्रगत, पर ज्ञानी जन पर क्षेत्रगत गेयों को तो छोड़कर, रे छोड़कर सब गे, पर क्षेत्रगत सब गेयों को छोड़कर और निज क्षेत्र को छोड़े नहीं, और निज क्षेत्र को छोड़ते नहीं है। तो इस तरह से एक को छोड़ते हैं तो एक की अस्थि और एक को छोड़े नहीं उसकी नास्ति, वो अस्थि नास्ति पर ही उन्होंने क्षेत्र वाला गठन किया। अब मैंने समझ लो पूरा जो 8-10 पेज है ये सब पढ़ा दिए, इसमें यही है पढ़ना अपने आराम से शांति से तो सब ख्याल में आएगा। और हर एक बोल में वो पांडे राजमल जी का एक ही तरीका है, वो देख लो इसमें 269 पेज पे, दो ही लेने पड़ूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। कोई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा है कि जो वस्तु को पर्याय रूप मानता है, द्रव्य रूप नहीं मानता, उनने स्वरूप और पररूप की बात थी और उसे ये द्रव्य पर्याय रूप कहते हैं, ऐसा पक्ष बनाते हैं, समझ रहे ना। इसलिए जितना समस्त वस्तु का आधारभूत प्रदेश पुंज है उनको उसको जानता है ज्ञान, और जानता हुआ उसकी आकृति रूप परिणामा है ज्ञान, इसका नाम है पर क्षेत्र है, और उस क्षेत्र के को ज्ञान का क्षेत्र मानता है एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव, उस क्षेत्र से सर्वथा भिन्न है, चैतन्य प्रदेश मात्र ज्ञान का क्षेत्र है, उसे नहीं मानता, पर उसी चीज को इन्होंने द्रव्य और पर्याय पर घटित किया है। और ये जो छंद है ना फिर बनारसी दास जी के पेज नंबर 260 पे, वे छंद ये सब इस तरह के हैं, कैसे जो उद्रव और पर्याय पर घटित करके बताने वाली, पढ़ो इन संतों को पढ़ो।
कोसठ कहे जे तो गेय रूप परवान ते तो ज्ञान दाते कहु अधिक न और है तिहु काल पर क्षेत्र व्यापी पर नयो माने अपान पिछाने सी मिथ्या द्रग दोर है जैन मति कहे जीव सत्ता परवान ज्ञान गेय सो अव्यापक जगत सिर मोर है ज्ञान की प्रभा में प्रतिबिंबित विविध गेय जदपि तथापि तिथि न्यारी न्यारी ठोर है को सुन वादी कहे गेय के विनाश होत ज्ञान को विनाश होई कहो कैसे जी जिए ताते जीव तव्यता की तीरता निमित्त सब गे आकार परिणाम निको नाश कीजिए सत्यवादी कहे भैया हो जे नाही खेद खिन्न गेय रचि ज्ञान भिन्न मानी लीजिए ज्ञान की सकति सादी अनुभव सारादि कर्म को त्यागी के परम रस पीजिए।
महाराज बहुत कुछ भाव ख्याल में आता है। फिर कुछ अज्ञानी लोग कहते हैं कि जितना गेय का क्षेत्र है, इसी नहीं का अर्थ पढ़ रहा हूं, उतना ही ज्ञान है, उतना ही ज्ञान है माने ज्ञान का क्षेत्र है, उससे कम और अधिक नहीं। इस प्रकार वे ज्ञान को तीनों काल में पर क्षेत्रगत से व्याप्त होकर परिणमित मानते हैं और अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानते नहीं हैं। उनके सदा ऐसी मिथ्या मान्यता का दौर ही चलता रहता है। स्यादवादी ज्ञानी जिनधर्मी तो कहते हैं कि गेयों में व्याप्त नहीं होने वाला जगत शिरोमणि ज्ञान ही जीव की सत्ता प्रमाण है। तात्पर्य यह है कि जितनी और जहां जीव की सत्ता है ज्ञान भी उतना ही और वहां ही रहता है। यद्यपि ज्ञान की प्रभा में ज्ञान के आलोक में अनेक प्रकार के अनेक गेय झलकते हैं तथापि गेय और उन्हें जानने वाला ज्ञान की सत्ता जुदी जुदी है। कोई शून्यवादी कहता है कि गेयों के विनाश होने पर ज्ञान का भी विनाश हो जाता है। जब आप ही अब आप ही बताइए कि हम कैसे जिए। इसीलिए जीव के जीवन के लिए गेयों रूप निमित्तों के आधार से होने वाले गेयाकार प्रणमन का नाश किया जाना चाहिए। उनसे सत्यवादी ज्ञानी कहते हैं कि हे भाई खेद खिन्न क्यों होते हो, गेयों से विरक्त उन्हें जानने वाले ज्ञान को उनसे भिन्न स्वीकार कर लीजिए। ज्ञान की शक्ति का साधन करके अनुभव दशा की आराधना करके सब प्रकार शुभाशुभ भाव रूप कर्मों का परित्याग करके परमानंद का रस पीजिए। या क्या ये दोनों का है। उक्त संपूर्ण कथन में मूल बात यह है कि ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के ज्ञान में पर क्षेत्रगत गेय झलकते हैं और उन्हें देखकर यह अज्ञानी जीव या तो स्वयं को पर क्षेत्रगत मान लेता है या पर क्षेत्र को निज रूप मान लेता है। इसकी यह मान्यता ही अज्ञान है और एकांत है। ये देखो प्रवचन सारी में आया ना वही, यह आत्मज्ञान प्रमाण है और ज्ञान गेय प्रमाण है, है गे लोकालोक इस विधि सर्वगत यह ज्ञान है। तो ज्ञान को सर्वगत कह दिया, लोकालोक गे है तो लोकालोकगत कह दिया। अब वे कहते वास्तविक स्थिति क्या है, मैं सर्वगत हूं कि मैं आत्मगत हूं। तो एक ऐसा मत है भारतीय दर्शनों में कि जो भगवान को सर्वगत मानता है, क्योंकि जो कुछ जगत में दिखाई देता है वो सब भगवानमय है। सिया ब्राह्म मय सब जग जानी, सर्वम खदुमरम ब्रह्मा नेह नानास्ति किंचना, ऐसा मानने वाले ऐसे जगत में जो लोग हैं। और ये कुछ ऐसा मानते हैं कि नहीं, पर वो तो जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान है। क्योंकि ऐसा प्रश्न किया है कि ज्ञान गुण और आत्मा, यदि ज्ञान गुण को आत्मा से बड़ा मानेंगे तो मान लीजिए कि मनुष्य का अपना आकार है, इसमें आत्मा रहता है और ज्ञान गुण बड़ा है तो इसके बाहर भी रहेगा। तो कहते हो बाहर वो ज्ञान गुण को आश्रय भूत द्रव्य नहीं रहा, तो आश्रय के अभाव में वो नष्ट हो जाएगा है? और आत्मा गुण, आत्मा के भी मानो तो अगर आत्मा में ही मानेंगे बाहर नहीं जाएगा तो जानेगा कैसे। अब स्थिति ये है कि जान ने कोई जाना कहते हैं। इस सारे व्याकरण शास्त्र का नियम है कि जितनी धातुओं का अर्थ टू गो माने जाना होता है, उन सब का अर्थ नियम से जानना होता है। अब क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों का होता है, और उसमें आत्मा में एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर जाता भी है और जानता भी है, पुद्गल जानता नहीं है। तो आत्मा में दो गुण हुए, एक जाने के और एक जानने के, और पुद्गल में एक ही रहा। तो जब जब दुमनार्थक धातुओं का प्रयोग पुद्गल के साथ होगा तब तब नियम से जाने के अर्थ में होगा, और जब जब आत्मा के संबंध में होगा तो जाना भी उसका अर्थ हो सकता है और जानना भी उसका अर्थ हो सकता है। तो जब जाने की बात आएगी तो कहेंगे तीन लोक के बाहर नहीं जा सकता कोई भी, और मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा सकता। लेकिन मनुष्य मानसोत्तर पर्वत के आगे की बात जानता तो है ना, क्यों नहीं जानता? केवली तो जानते ही है ना, लोकालोक को जानते हैं क्या नहीं जानते हैं? तो जब वो अलोकाकाश तक की भी जान लेते हैं तो मानसोत्तर क्या रह गया उनको? और जितने हमारे अरहंत सिद्ध अरहंत भगवान हैं वो तो सब मनुष्य ही होते हैं, तो तुमने मानसोत्तर पर्वत के आगे नहीं जानना चाहिए। तो उनका जानना प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन जाना प्रतिबंधित है। जाएंगे नहीं वो ढाई दीप के बाहर, जान तो सकते हैं। तो कहते हैं कि अब हमने सर्वगत, सर्वम गच्छति इति सर्वगत और सर्वम अवगच्छति इति सर्वगत, सबको जाने सो सर्वगत और सब जगह जाए सो सर्वगत। तो जो सब जगह जाए इस अर्थ में तो सर्वगत नहीं है, और सबको जाने इस अर्थ में सर्वगत है। अब भी दोनों में मान लेगा क्या? दोनों में नहीं मानेगा, इतनी सी बात है। वो कहते हैं ऐसी ही विशेषता है कि ज्ञान ज्ञेय प्रमाण, आत्म ज्ञान प्रमाण है, तो आत्मा तो ज्ञान प्रमाण है और फिर ज्ञान ज्ञेयों के प्रमाण है। तो ज्ञान कितना है कि जहां तक ज्ञेय वहां तक, और ज्ञेय क्या है तो कि लोकालोक है, तो इसलिए फिर ज्ञान सर्वगत हो गया। ऐसे उन्होंने सब, तो वो कहते जैन धर्म का ये जो सर्वगतत्व तो है इसको उन लोगों ने मान लिया और इसको का ये कांत उन्होंने ग्रहण कर लिया। ये समस्या है। अब बस बात इतनी सी है कि इतना जानना है कि वो जानने को भी जानना कहोगे, जानने को भी जाना कहोगे तो सर्वगत कह सकते हो, और जानने को जाना नहीं कहोगे तो सर्वगत नहीं कह सकते हो। तो आत्मा ज्ञान आत्मा के एक प्रदेश से भी बाहर नहीं निकलता है, माने जैसे हमारा यहां आत्मा के प्रदेश है तो यहां ज्ञान भी है। अब यहां हमारे आत्मा के प्रदेश नहीं है तो हमारा ज्ञान भी यहां नहीं है। अब हमारे ज्ञान ने ऐसे तो जान लिया, तो अकेला केवली जानता है क्यों? अपन मनुष्य जो है वो ढाई दीप के बाहर, क्योंकि केवली तो बिना जाए जान लेता है, तो अपन लोग तो बिना जाए नहीं जान सकते हैं। अमेरिका जाना पड़ता है ना अमेरिका को जानने के लिए, कि नहीं भाई तुम भी जानते हो, अमेरिका भले ही तुमने जाके जाना होगा, लेकिन बिना जाए भी तुम जानते थे कि अमेरिका है। तुम नहीं जानते हो कि आठवां द्वीप नंदीश्वर है और वहां कीर्तन चैत्यालय है और तुम उसकी नक्शा बना करके और पूजा करके अर्घ भी चढ़ा देते हो। तो तुम ऐसा क्यों भ्रम पालते हो कि अभ्रंत ही जानेंगे, हम नहीं जानते हैं। पर इतना ही है, वे प्रत्यक्ष जानते हैं और हम परोक्ष जानते हैं। वे अपनी आंख से मन वे अपने आत्मा के प्रदेशों से साक्षात देखते हैं और हमने परोक्ष जाना, तो परोक्ष कैसे जानते होंगे फिर अपन। अरे परोक्ष जानना माने शास्त्र में पढ़ के जानना, अनुमान से जानना, युक्ति से जानना, इन सबको जानना ही बोलते हैं। जो जानने के भेद हैं, नहीं जानने के भेद नहीं है। जब ये बात कहते हैं तो कहते हैं हम तो नहीं जानते, जान ढाई दिन के भागी तो हम नहीं जानते हैं। वो रमण समुद्र में वो एक महामत्स्य रहता है और उसकी आंख में संदूर मत्स्य रहता है, ये आप लोग कौन नहीं जानता, हाथ उठाओ। तो कौन कहता नहीं जानते हैं। तो उसमें लिखा है कि श्रादवाद में और सर्वज्ञ में सिर्फ प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है। हम ना परोक्ष को क्या समझते हैं, वो समझ शास्त्र में पढ़ के जानने को परोक्ष ज्ञान नहीं समझते हैं, जबकि वो शास्त्र में परोक्ष है। प्रत्यक्ष परोक्ष इसी का नाम परोक्ष है, अनुमान से जानने का नाम परोक्ष ज्ञान है। देखो मति श्रुत अवधि, मति श्रुत ये दो ज्ञान परोक्ष है ना। तो जितना मति तो आगम भी श्रुत ज्ञान में आ गया और अनुमान ज्ञान मति ज्ञान में आ गया, तो ये परोक्ष ज्ञान है। हमने इंद्रियों से जाना तो इंद्रियों के अधीन हो गया, तो इंद्रिय तो भी परोक्ष हो गया। वो एक ये भी परिभाषा है कि वो अस्पष्ट हो वो परोक्ष, स्पष्ट हो वो प्रत्यक्ष। कहाँ है न्यायाधीप का में विशदम प्रत्यक्षम, जो निर्मल ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है और जो अनिर्मल ज्ञान है वो परोक्ष है। तो हम सब जानते हैं लेकिन सिर्फ इतना नहीं जानते हैं कि हम जानते हैं, इसको ये ज्ञान कहते हैं, उसका प्रयोग हम कर रहे हैं, समझे ना। जैसे कल बताया था कि सब न्यायों का प्रयोग व्यवहार में सब करते हैं, लेकिन बस ये नहीं जानते हैं कि ये कौन न्याय का कथन, उस न्याय का नाम नहीं जानते, उस न्याय की परिभाषा नहीं जानते, लेकिन उन न्यायों का प्रयोग सब करते हैं। जिनने व्याकरण रंच मात्र नहीं पढ़ी हिंदी की और हिंदी एरिए में पैदा हुए तो बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं, और जो व्याकरण पढ़ पढ़ करके हिंदी के विद्वान बन गए और हैं अहिंदी भाषी हैं, तो वे हर जगह ने लगा देते हैं। राम जाता है तो लेकिन राम ने जाता है, क्यों ने पढ़ लिया था, करता मैं ने कर्म को कर्म से क्यों, तो राम ने जाता है बोलते हैं क्यों, और अच्छे उसके विशेषज्ञ विद्वान है, पीएचडी हैं, वे हैं बनाते हैं, और ये जो बिल्कुल गांव का ग्रामीण पैदा हुआ है वो राम ने जाता है कभी नहीं बोलेगा। तो अभी वे सब बोलेंगे मैंने जाना है, अब हिंदी वाला बोले मुझे जाना है, नहीं नहीं मुझे जाना है। हम सबने ये काम करना चाहिए, अब वो तो करता है ना उसे लगा देंगे, अपने तो हम सबको ये काम करना चाहिए, भले ही को लगाएंगे। तो वो तो बहुत स्थूल कथन है कि जिनमें हमने कर्ता माने ने और कर्म माने को लगा दिया है, जो असली जो हिंदी है वो तो कुछ अलग ही चीज है, क्योंकि हर भाषा का ऐसा है, हर जगह ऐसा नहीं लगता है। जो नाटकों की भाषा होती है वो जिंदा भाषा होती है, और ये बाकी तो सब मृत भाषा है। मृत भाषा माने क्या, हमने आपसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुमने कहा मेरा नाम ऋषभ चंद है, तो इसमें जो मृत भाषा हो गई जा। हमने तुम्हारा नाम क्या है, ऋषभ चंद ये जिंदा है, वो कुछ करता नहीं लगाएगा, ये नहीं बताएगा मेरा नाम फलाना है ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, है ना। वो जिंदा भाषा समझ में है ना, अलंकारिक भाषा है, वो संस्कृत द्वारा पूछेगा कि आपके नाम ने किन शब्दों को अलंकृत किया है, आपके नाम का कौन से शब्द वे सौभाग्यशाली हैं कि जिनसे आपका नाम रखा गया है, किन शब्दों में अलंकृतानी ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो वो भाषा, भाषा की गहराई को जानते ही नहीं है, है? अब वे जो व्याकरण पर पढ़ के भाषा जो सीखते हैं वो उनकी वैसी भाषा होती है, जिसमें मराठी टोन गुजराती टोन है, छोटी बड़ी का किसी को पता ही नहीं है, कहाँ छोटी लगती है कहाँ बड़ी लगती है, कहाँ छोटा ऊ लगता है कहाँ बड़ा ऊ लगता है, उन्हें सब एक से ही दिखता है, उन्हें भानु और गुरु दोनों एक से ही दिखते हैं, और है ना भानु भानु, तो एक वचन का भानु और दो ही वचन का भानु है ना, उनको दोनों एक से ही दिखते हैं, यहाँ वो लिख देंगे वहां वो लिख देंगे, सब चलता है। चलो।